ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षता सिंह से समाचार सुनिए। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
The composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things.
श्री नायडू ने कहा कि समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए जारी मौजूद मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश सुझाएगी। समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें परिवारों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में समीक्षा बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज रूम का भी दौरा किया, जहां मृतकों के शव रखे गए हैं। इस बीच अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डीएनए मिलान की प्रक्रिया जारी है। सिविल अस्पताल के अधिकारियों ने डीएनए नमूनों के आधार पर अब तक 9 पीड़ितों की पहचान की है। बीजे मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल के पास स्थित छात्रावासों को खाली कराने का फैसला किया है। इस घटना में विमान में सवार 241 लोगों और मेडिकल छात्रों सहित 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इससे पहले दिन में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में गुजरात फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट टीम के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी पहले चरण में साइप्रस जाएंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडॉलिडेस के साथ वार्ता करेंगे और व्यापार जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को कनाडा पहुंचेंगे। ये दौरा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले तेल अवीव, यरूशलम और तेहरान में किए गए। इसराइल के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। दूसरी ओर ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि इसराइली हमलों में ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के 2 डिप्टी कमांडर मारे गए। ईरान पर इसराइल के हमलों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों सहित कम से कम 78 लोग मारे गए हैं। इस बीच ईरान ने अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि वे तेहरान के जवाबी हमलों को रोकने में इसराइल की मदद न करें। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज शाम गरज के साथ बारिश हो सकती है। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच के आज चौथे दिन उसने 5 विकेट से जीत हासिल की। एडम मार्करम ने सबसे अधिक 136 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार WTC का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।